एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व के श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के रूसी साहित्य के एक ऐसे महाकाव्य पर बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल साहित्य जगत में हलचल मचाई बल्कि शीत युद्ध के दौर की राजनीति को भी गर्मा दिया था। बोरिस पास्टरनाक का डॉक्टर ज़िवागो।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसी किताब जिसे लिखना और छपवाना ही आप कह सकते हैं अपने आप में कहानी बन गया। पास्टरनाक जो देखिए मूलतः एक कवि थे, उन्होंने इस उपन्यास में रूस के इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे दौर को देखा है।
हाँ।
मतलब क्रांति, गृह युद्ध, फिर वो स्टालिन युग, और ये सब एक व्यक्ति की नजरों से, एक डॉक्टर और कवि यूरी ज़िवागो।
बिल्कुल, और पास्टरनाक का अपना जीवन भी मतलब 1890 से 1960 तक कम नाटकीय नहीं था। कलात्मक माहौल में पले बड़े, संगीत और दर्शन से साहित्य की तरफ आए।
हाँ, और वो दौर सोचिए, स्टालिन का दमन का दौर, जब कई लेखक या तो गायब हो गए या बिल्कुल खामोश कर दिए गए, तब पास्टरनाक ने अनुवाद के जरिए, खासकर शेक्सपियर के, अपनी रचनात्मकता को एक तरह से बचाए रखा।
सही कहा। और इसी पृष्ठभूमि में मतलब दशकों के अनुभव और सोच विचार के बाद 1955 में जाकर डॉक्टर ज़िवागो पूरा हुआ।
लेकिन सोवियत संघ में इसे छापने से साफ इनकार कर दिया गया।
हाँ, क्यों? क्योंकि उस वक्त के जो सरकारी साहित्यिक मापदंड थे, जिसे समाजवादी यथार्थवाद कहते थे,
हाँ, सोशलिस्ट रियलिज्म,
मतलब जिसमें क्रांति और व्यवस्था का गुणगान जरूरी था, उसके खांचे में ये फिट नहीं बैठता था।
बिल्कुल, इसमें तो व्यक्ति की निजी भावनाओं की बात थी, उसकी तकलीफों की, व्यवस्था से उसके कह सकते हैं मोहभंग की बातें थीं।
सही कहा, और यहीं से शुरू होता है इसका वो रोमांचक सफर।
हाँ, वो पांडुलिपि गुप्त रूप से इटली भेजी गई,
1957 में छपी और फिर तो तुरंत दुनिया भर में सराही गई।
जबरदस्त। और फिर 1958 में पास्टरनाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला,
लेकिन वो ले नहीं पाए। सोवियत सरकार का इतना भारी दबाव था कि उन्हें इसे ठुकराना पड़ा।
सोचिए, और ये किताब रूस में, अपने ही देश में, 1987 तक प्रतिबंधित रही।
हाँ, लोग गुप्त रूप से पढ़ते थे। ये सामिसदत यानी भूमिगत साहित्य का एक बहुत मशहूर उदाहरण बन गई।
बिल्कुल बिल्कुल, तो आज हम इसी जटिल और भावनात्मक रूप से गहरे उपन्यास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे।
हाँ, इसकी कहानी देखेंगे, इसके पात्रों की यात्राएं समझेंगे, और वो बड़े सवाल जो ये आज भी हमारे सामने रखता है उन पर बात करेंगे।
चलिए, तो कहानी के दिल में उतरते हैं। शुरुआत ही बहुत मार्मिक है, जैसा आप कह रहे थे।
बेहद। कहानी शुरू होती है एक बर्फीले दिन। 10 साल का यूरी ज़िवागो है।
हाँ।
अपनी माँ के जनाजे में शामिल है, वो अनाथ हो जाता है,
और फिर उसका आनंदभूषण मॉस्को की एक उदार बौद्धिक ग्रोमेको परिवार में होता है, अपनी होने वाली पत्नी टोनिया के साथ। यहाँ हमें क्रांति से पहले के रूस की एक झलक मिलती है,
वो साहित्यिक शामें, बौद्धिक बहसें।
हाँ, एक ऐसा जीवन जो बहुत जल्द बिखरने वाला है, जैसे तूफान से पहले की शांति।
बिल्कुल।
और इसी के समानांतर एक और कहानी शुरू होती है, लारा गुइशार की।
हाँ, और उसकी दुनिया तो बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल अलग। एक किशोरी है जिसका शोषण एक अमीर और कह सकते हैं प्रभावशाली वकील विक्टर कुमारोव्स्की कर रहा है।
लारा में एक अजीब सा आकर्षण है, मतलब सुंदरता तो है ही, पर साथ साथ एक गहरी आत्मा भी दिखती है।
हाँ, दो बिल्कुल विपरीत जीवन धाराएं जो आगे चलकर टकराने वाली हैं।
फिर आता है इतिहास का पहला बड़ा झटका, 1905 की क्रांति।
हाँ, समाज में उथल पुथल मचती है और इसका असर इन किरदारों पर भी पड़ता है, जाहिर है। यूरी उस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी वो कवि वाली आत्मा भी जाग रही है।
हाँ, यहीं से उसकी वो दोहरी पहचान बनती है, डॉक्टर और कवि।
और दूसरी तरफ लारा है जो कुमारोव्स्की के जाल से निकलने की छटपटाहट में है और कुछ क्रांतिकारी छात्रों के संपर्क में आती है।
ये जो शुरुआती अनुभव है, ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य की नींव रखते हैं।
बिल्कुल। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध, जो सिर्फ देशों को नहीं तोड़ता बल्कि लोगों की आत्माओं को भी एक तरह से तोड़ देता है।
यूरी एक सैन्य डॉक्टर बनकर मोर्चे पर जाता है और वहां वो युद्ध की असलियत, उसकी क्रूरता, उसकी बर्बादी को बहुत करीब से देखता है।
हाँ, उसका आदर्शवाद टूटने लगता है वहां।
और यहीं युद्ध के मैदान के पास एक अस्पताल में उसकी पहली मुलाकात लारा से होती है,
जो नर्स बनकर आई है।
हाँ, उस वक्त उनके बीच कुछ खास नहीं होता, पर ऐसा लगता है जैसे नियति उन्हें एक दूसरे के रास्ते पर ला रही थी।
युद्ध का अनुभव यूरी के लिए एक बहुत बड़े मोहभंग की शुरुआत है। वो देखता है कि कैसे बड़े बड़े आदर्श वो सब खोखले साबित होते।
फिर आता है 1917 फरवरी और अक्टूबर की क्रांतियाँ।
ये तो उपन्यास का केंद्र बिंदु है।
हाँ बिल्कुल,
पुरानी दुनिया ढह जाती है।
शुरुआत में लगता है कि शायद कुछ बेहतर होगा, कुछ उम्मीद जगती है,
लेकिन जल्द ही नई व्यवस्था की अपनी क्रूरता, अपनी अव्यवस्था सामने आने लगती है।
और ज़िवागो परिवार को मॉस्को का वो आरामदायक जीवन छोड़कर उराल पर्वत के पास अपनी दूर दराज की जागीर वारिकिनो वहां जाना पड़ता है।
ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है।
नहीं, ये उनके पूरे जीवन, उनकी पहचान का उखड़ जाना है ना?
हाँ बिल्कुल, शहर का वो बौद्धिक जीवन, वो सुख सुविधाएं सब पीछे छूट जाते हैं। अब संघर्ष है सिर्फ जिंदा रहने का।
और फिर शुरू होता है रूसी गृह युद्ध का वो भयावह दौर।
हाँ, लाल सेना और श्वेत सेना के बीच का संघर्ष ये उपन्यास का शायद सबसे तीव्र, सबसे दर्दनाक हिस्सा है।
यूरी को तो जबरन एक पक्ष की सेना में डॉक्टर के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है।
महीनों तक वो अपने पनेमरा से कटा रहता है, हिंसा और बर्बरता का गवाह बनता है। वो देखता है कि कैसे राजनीतिक कट्टरता इंसानियत को ही खत्म कर देती है।
इस भयानक अनुभव से बचकर जब वो वापस वारिंकियों लौटता है तो वहां उसे कौन मिलता है?
लारा।
हाँ,
और यहीं उस गृह युद्ध की अराजकता और बर्बादी के बीच यूरी और लारा का वो गहरा प्रेम संबंध पनपता है।
वारिंकियोनो उनके लिए जैसे एक नखलिस्तान बन जाता है।
बिल्कुल, प्रकृति की गोद में बाहरी दुनिया की क्रूरता से दूर, जहां वो प्यार करते हैं और जहां यूरी अपनी कुछ सबसे बेहतरीन कविताएं लिखता है।
ये पल जैसे समय से चुराए हुए लगते हैं, है ना? एक संक्षिप्त अभयारण्य।
हाँ, एक छोटी सी राहत।
लेकिन क्या इतिहास उन्हें चैन से रहने देता है? पास्तरनाक का एक मुख्य संदेश शायद यही है कि इतिहास की बड़ी ताकतें व्यक्तिगत जीवन को कुचल देती हैं।
सही कहा, उनका ये अभयारण्य भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। बाहरी दुनिया की उथल पुथल उन्हें फिर से अलग कर देती है।
हाँ, ये अलगाव बहुत दर्दनाक है। इसके बाद यूरी वापस मॉस्को लौटता है, लेकिन अब वो पहले वाला यूरी नहीं है।
नहीं, उसमें गहरी थकान आ गई है, एक आध्यात्मिक टूटन है।
वो नई सोवियत व्यवस्था में फिट होने की कोशिश करता है, अपनी डॉक्टरी नैतिकता, अपनी कलात्मक ईमानदारी बचाए रखने की जद्दोजहद करता है,
लेकिन ये सब उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है अंदर से।
और लारा से उसका फिर मिलना और बिछड़ना, वो भी तो कहानी का एक अहम मोड़ है।
बिल्कुल, और एक बार फिर विडंबना देखिए, कुमारोवस्की ही उनकी संक्षिप्त मुलाकात करवाता है।
हाँ, शायद उन्हें बचाने के बहाने से,
शायद, लेकिन अंततः उन्हें फिर अलग होना पड़ता है। ये जैसे प्रतीक है कि उस दौर में सच्ची व्यक्तिगत खुशी वो लगभग नामुमकिन थी।
और अंत में यूरी की मृत्यु, मॉस्को के एक भीड़ भरी ट्रैम में दिल का दौरा पड़ने से।
हाँ, ये जैसे एक संवेदनशील आत्मा की उस युग की भारी भरकम अमानवीय ताकतों के सामने अंतिम हार है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक उपसंहार भी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट है।
हाँ, उसमें हमें ज़िवागो और लारा की बेटी का पता चलता है और उनके दोस्त यूरी की कविताओं को इकट्ठा करते हैं।
ये क्या दिखाता है? शायद ये कि जीवन भले ही नष्ट हो जाए पर कला बच रहती है, एक धीमी हल्की सी उम्मीद।
हाँ बिल्कुल, कला जैसे मानवीय आत्मा की गवाही बनके रह जाती है। जीवन की क्षणभंगुरता के सामने कला का स्थायित्व, ये उपसंहार एक तरह का समाधान तो नहीं देता पर एक निरंतरता का एहसास जरूर कराता है।
चलिए अब किरदारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। यूरी ज़िवागो, वो तो इस कहानी का दिल और दिमाग है।
हाँ,
एक डॉक्टर जो लोगों का दर्द दूर करना चाहता है और एक कवि जो उस दर्द और सुंदरता को शब्दों में ढालना चाहता है।
और वो पुरानी दुनिया के मूल्यों और नई क्रांति की उथल पुथल के बीच फंसा हुआ है।
उसकी त्रासदी शायद यही है कि वो इन दोनों भूमिकाओं के बीच या अपनी निजी इच्छाओं और बाहरी दुनिया की मांगों के बीच संतुलन नहीं बना पाता।
हाँ, मतलब टोनिया और लारा के प्रति उसका प्रेम,
और दूसरी तरफ डॉक्टर का कर्तव्य व्यवस्था के अनुरूप चलने का दबाव।
वो इतिहास की लहरों पर बहता जाता है, प्रतिरोध करने की कोशिश करता है पर अंततः थक जाता है।
क्या उसकी निष्क्रियता सिर्फ हालात का नतीजा है या उसमें कोई व्यक्तिगत कमी भी है? ये सवाल पाठक के मन में रह जाता है।
ये सोचने वाली बात है। और लारा, लारिसा फ्योदोरोवना गिशार,
वो शक्ति और संवेदनशीलता का एक अद्भुत मिश्रण है।
हाँ, बचपन में शोषित होने के बावजूद उसमें एक जबरदस्त आंतरिक शक्ति है, एक गरिमा है।
उसका जीवन भी त्रासदियों से भरा है, लेकिन वो यूरी की तरह टूटती नहीं बल्कि हर बार जैसे राख से फिर उठ खड़ी होती है।
उसका और यूरी का रिश्ता सिर्फ रोमानी नहीं है, उसमें एक गहरी बौद्धिक और आध्यात्मिक समझ भी है। वो एक दूसरे की आत्मा को पहचानते हैं ऐसा लगता है।
हाँ, लारा का चरित्र उस दौर में महिलाओं के संघर्ष, उनकी सहन शक्ति और प्रेम की कीमत चुकाने की कहानी कहता है।
उस जिंदा रहने की कला जानती है, पर उसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है।
और टोनिया ग्रोमेको, यूरी की पत्नी।
हाँ, टोनिया। वो उस संभ्रांत सुसंस्कृत वर्ग का प्रतीक है जिसे क्रांति ने पूरी तरह मिटा दिया।
वो निष्ठावान है, पारंपरिक है, और उसका सब कुछ छिन जाने का दर्द बहुत वास्तविक लगता है।
उसका परिवार सहित पेरिस चले जाना उस दौर के बौद्धिक पलायन और सांस्कृतिक बिखराव को दिखाता है।
और फिर है पावेल एंटीपोव, जो बाद में निर्दयी क्रांतिकारी कमांडर स्ट्रेलनिकोव बन जाता है।
ओ हाँ, ये शायद सबसे नाटकीय बदलाव है पूरे उपन्यास में।
एक आदर्शवादी शिक्षक से एक कट्टर भावना शून्य क्रांतिकारी।
उसका चरित्र दिखाता है कि कैसे ऊंचे आदर्श भी जब राजनीतिक कट्टरता का रूप ले लेते हैं तो इंसान की पहचान को ही निगल जाते हैं।
स्ट्रेलनिकोव का बदलना तो जैसे आत्मा का सौदा करने जैसा है।
हाँ, मतलब मुक्ति दिलाने के नाम पर खुद ही बेरहम बन जाना, त्रासदी है ये।
और विक्टर कोमारोव्स्की, वो अवसरवादिता और भ्रष्ट ताकत का प्रतीक है, है ना, जो हर व्यवस्था में अपना रास्ता बना लेता है।
बिल्कुल, चाहे जार का शासन हो या क्रांति के बाद का दौर, वो हमेशा सत्ता के करीब रहता है।
वो दिखाता है कि शोषण और अनैतिकता किसी विचारधारा की मोहताज नहीं होती।
सही।
इन किरदारों और उनकी कहानियों के जरिए पास्टरनाक कई गहरे विषय उठाते हैं।
हाँ, सबसे बड़ा तो यही है, व्यक्ति बनाम इतिहास की विशाल ताकतें।
क्या व्यक्ति सिर्फ इतिहास की कठपुतली है या उसके पास अपने चुनाव करने की आजादी है?
जिवागो जैसे तूफान में पत्ते की तरह लगता है कई बार, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, उसकी कविता, उसकी नैतिकता, वो उसकी अपनी है।
हाँ, उसका चुनाव है वो।
प्रेम का स्वरूप और उसकी कीमत भी एक केंद्रीय विषय है। यहाँ हमें प्रेम के कई रंग दिखते हैं।
बिल्कुल, यूरिका टोनिया के प्रति वो शांत पारिवारिक प्रेम,
और लारा के प्रति वो जुनून और गहरी आत्मीयता वाला प्रेम।
क्या ये विरोधाभास है या मानवीय रिश्तों की जटिल सच्चाई? मुझे लगता है पास्टरनाक का एक मुख्य संदेश ये है कि प्रेम, खासकर मुश्किल हालातों में पनपा प्रेम, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ज्यादा ताकतवर और सच्चा होता है,
भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी क्यों ना हो।
हाँ, और ये प्रेम हमेशा खतरे में है, सामाजिक उथल पुथल, राजनीतिक हिंसा, अलगाव।
ये इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे नाजुक चीज भी।
और कला का महत्व, जिवागो की कविताएं वो सिर्फ उसका निजी दर्द बयान नहीं करती।
नहीं, वो उस पूरे दौर की पीड़ा, सुंदरता और मानवीय जज्बे को समेट लेती हैं।
कला यहाँ एक शरण स्थली भी है और प्रतिरोध का एक तरीका भी।
जैसा कि जिवागो खुद कहता है, कला हमेशा सुंदरता की सेवा करती है, और सुंदरता रूप धारण करने का आनंद है, और रूप जैविक जीवन की कुंजी है।
वाह, मतलब कला जीवन को अर्थ देती है, उसे बचाए रखती है, भले ही जीवन खुद खत्म हो जाए।
हाँ, और आदर्शों के भ्रष्ट होने का विषय भी बहुत शक्तिशाली है, खासकर स्ट्रेलनिकोव के जरिए।
कैसे अच्छे इरादे भी सत्ता की राजनीति और हिंसा के चक्कर में अपनी राह भटक जाते हैं।
ये यूटोपिया या आदर्श समाज बनाने के दावों पर एक तरह की टिप्पणी है कि अक्सर ऐसी कोशिशें उन्हीं मानवीय मूल्यों को कुचल देती हैं जिन्हें बचाने का वो दावा करती हैं।
और प्रकृति, उसका क्या रोल है? वो वारिकिनों के दृश्य, मौसम का बदलना, रूस के विशाल लैंडस्केप का वर्णन।
हाँ, वो सब सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, प्रकृति जैसे इन मानवीय संघर्षों से परे एक शाश्वत शक्ति है
जो राहत भी देती है और आत्मा को सुकून भी, एक ठहराव देती है।
बिल्कुल, पास्टरनाक की शैली भी अनोखी है, वो एक कवि की तरह लिखते हैं, भाषा गीतात्मक है, बिंबों से भरी हुई।
हाँ, वो एक साथ किरदारों के अंदरूनी उथल पुथल और बाहरी ऐतिहासिक घटनाओं के विशाल फलक को समेट लेते हैं।
वो हमें बताते नहीं, दिखाते हैं, महसूस करवाते हैं।
कुछ पंक्तियाँ तो सीधे दिल में उतर जाती हैं, जैसे वो वाली, मनुष्य जीने के लिए पैदा हुआ है, जीवन के तैयारी के लिए नहीं।
हाँ, ये पूरी विचारधारा पर एक सवाल है, वर्तमान क्षण के महत्व पर जोर है।
या जब जिवागो लारा से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे इतना प्यार कर पाता अगर तुम्हारे पास शिकायत करने या पछताने के लिए कुछ ना होता।
जीवन ने उनके सामने अपनी सुंदरता प्रकट नहीं की है जो कभी गिरे या ठोकर ना खाए हों।
हाँ, ये मानवीय अपूर्णता और पीड़ा में छिपी गहराई और सुंदरता की बात है।
अद्भुत। और ये पंक्तियाँ उस दौर के दबाव को कैसे उजागर करती हैं? वे आपसे बहुत कुछ नहीं मांगते, वे केवल चाहते हैं कि आप उन चीजों से नफरत करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, और उन चीजों से प्यार करें जिनसे आप घृणा करते हैं।
उफ, ये दिखाता है कि कैसे सत्तावादी व्यवस्थाएं इंसान की सबसे बुनियादी भावनाओं को भी नियंत्रित करना चाहती हैं।
हाँ, उनको भी। कुल मिलाकर ये उपन्यास एक गहरा भावनात्मक अनुभव है।
ये इतिहास की बड़ी घटनाओं को व्यक्तिगत त्रासदी और प्रेम की कहानियों के माध्यम से दिखाता है।
ज़िवागो और लारा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में मानवीय जुड़ाव और सौंदर्य रचने की कोशिश का प्रतीक है।
हाँ, और ये कोई आसान जवाब नहीं देता। क्रांति को न तो पूरी तरह महिमामंडित करता है, न ही पूरी तरह नकारता है।
बिल्कुल नहीं, ये उसकी जटिलता, उसके विरोधाभासों, उम्मीद और निराशा, न्याय और अन्याय दोनों को सामने रखता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बड़े ऐतिहासिक बदलावों के बीच व्यक्तिगत जीवन का, नैतिकता का, कला का क्या महत्व है।
ये उपन्यास जटिल ऐतिहासिक और नैतिक प्रश्नों को सरल बनाने से इनकार करता है, मानवीय अनुभव को उसकी पूरी जटिलता में प्रस्तुत करता है।
और शायद यही कारण है कि ये आज भी इतना प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़े ऐतिहासिक तूफानों के बीच भी व्यक्तिगत जीवन, प्रेम और कला का महत्व बना रहता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।